ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਜਾਗ ਪਿਆਰੇ ਅਬ ਤੂ ਕਾਹੇ ਕੋ ਸੋਵੇ, ਰਹਿਣ ਗਏ ਦਿਲ ਕਾਹੇ ਕੋ ਖੋਵੇ। ਜਾਗ ਪਿਆਰੇ ਅਬ ਤੂ ਕਾਹੇ ਕੋ ਸੋਵੇ, ਰਹਿਣ ਗਏ ਦਿਲ ਕਾਹੇ ਕੋ ਖੋਵੇ।
ਇਹ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਰੂਹ ਕੋ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਹਿਤੇ ਹੈਂ ਕਿਸੀ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਸੇ ਉਤਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਬ ਵੋ ਹਮੇਂ ਯੇ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ਸੇ ਜੁਦਾ ਹੋ ਚੁਕੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਆਗਾਜ਼ ਕੇ ਮੁਤਲਿਕ ਯਹ ਬਤਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕੇਲਾ ਥਾ, ਵੋ ਮਹਾਚੇਤਨਤਾ ਕਾ ਸਮੁੰਦਰ ਥਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਯਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਏਕ ਸੇ ਅਨੇਕ ਹੋ ਜਾਊਂ, ਏਕੋ ਅਹਮ ਬੇਸ਼ਮ। ਤੋ ਏਕ ਹਲੋਰ ਉੱਠੀ, ਏਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਦੋ ਸੂਰਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀ, ਏਕ ਜੋਤੀ ਕੀ ਔਰ ਏਕ ਸ਼ੁਰਤੀ ਕੀ। ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸੂਰਤੋਂ ਕੋ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੀ ਨਾਮ ਕੀ ਤਾਕਤ ਸੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਬਣੇ, ਨਾਮ ਕੇ ਦਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਔਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ, ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਲੂੰਗ ਬਣੀ। ਅਬ ਹਮ ਕਰੋੜੋਂ ਯੁਗੋਂ ਸੇ 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੂਨ ਮੇਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਗਰਮ ਗ੍ਰੰਥੋਂ ਮੇਂ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਰਚਨਾ ਕੀ ਤੋ ਵੋ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈ ਔਰ ਜੋ ਆਤਮਾਏ ਉਸਮੇਂ ਲੀਨ ਥੀ ਉਹਨੇ ਯੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਵੋ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਤੋ ਵੋ ਇਸ ਨਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਥੀ, ਬਹੁਤ ਦਿਲਕਸ਼ ਥੀ, ਬਹੁਤ ਅਟ੍ਰੈਕਟਿਵ ਥੀ, ਉਸਮੇਂ ਜਾ ਸਕਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਯੇ ਕਿਹਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ 8/9 ਤਾਦਾਦ ਤੱਕ ਜੋ ਆਤਮਾਏ ਥੀ ਉਹਨੇ ਨਈ ਰਚਨਾ ਨਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਮਗਰ ਜੋ 1/9 ਆਤਮਾਏ ਥੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਬਾਤ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀਆ ਕਿ ਹਮ ਤੋ ਆਪਸੇ ਅਲੀਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹਤੇ, ਹਮ ਤੋ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹੇ। ਤੋ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੋ ਜੋ 1/9 ਸਾਨੂੰ ਰਹਿ ਗਏ ਥੀ ਉਨਸੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਨਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੇਂ ਜਾਈਏ। ਮਗਰ ਉਨਸੇ ਯਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਆ ਕਿ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਆਪਕੋ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਨਿਜਗਰ ਮੇਂ ਲੈ ਆਏਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੇਂ ਲੀਨ ਕਰ। ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਜ਼ਮ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਯਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਤੇ ਥੇ ਕਿ ਅਭੀ ਤੋ ਵੋ 1/9 ਜੋ ਰੂਹੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਸੇ ਜੁਦਾ ਹੋਈ ਥੀ, ਵਹੀ ਹੈ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੋ ਯੇ ਹਮਾਰੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਯਹ ਕਬ ਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੇ ਜੁਦਾ ਹੋਈ, ਇਸਕਾ ਕੋਈ ਹਮ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਤੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਤੇ। ਯੇ ਜੋ ਆਰੀਆ ਸੰਮਤ ਹੈ 4 ਅਰਬੋਂ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋ ਇਸੀ ਕੀ ਉਮਰ ਬਤਾਈ ਜਾਤੀ, 4 ਅਰਬ ਸਾਲੋਂ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਬ ਆਪ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਯੇ ਜੋ ਆਰੀਆ ਸੰਮਤ ਹੈ ये तो आखिरी जो प्रलय हुई है उसके बाद की बात है, और इससे पहले तो कई प्रलय हुई हैं, कई महाप्रलय हुई हैं। अब हमारी जो आत्मा है वो कितनी देर से प्रभु से जुदा हुई हुई है, और 83 लाख जिया जून में तकलीफ़ उठा रही है, अब इसका अंदाज़ा कैसे हो सकता है। तो यही कबीर साहब हमें समझा रहे हैं कि हम अनंत काल से 83 लाख जिया जून में भटक रहे हैं। हम यहाँ अविद्या में हैं, भूल में हैं, अज्ञान में हैं। हमें ना तो अपनी सूझ है ना प्रभु की सूझ है, और यहाँ माया का प्रभाव इतना है कि हम तो ये भी भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं, कि हम देहधारी आत्मा हैं। हम तो अपने आप को जिस्म ही समझे बैठे हैं। हमारी जो सोर्स है प्रभु, उसका तो हमें ख्याल ही कैसे होता। हम तो अपनी आत्मा को भी नहीं जानते, और हम अपनी सारी की सारी ज़िंदगी जिस्म और जिस्मानियत के तलकात में ही बर्बाद कर देते हैं। तो संत महात्मा जब भी संसार में आते रहे हैं वो हमें यही बताते रहे हैं कि ये जो मनुष्य जन्म है ये बड़े भागों से मिलता है। यही सरदार जूनी है, इसे नर नारायणी दे कहा जाता है, अशरफुल मखलूकात कहा जाता है, क्राउन ऑफ क्रिएशन कहा जाता है, क्योंकि यही वो सुनहरी मौका है कि जिसमें हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो सकता है। और इस नर नारायणी दे की फजीलत ये है कि इसमें ईथर है, इसमें आकाश का तत्व जो है वो प्रबल है, इसमें कॉन्शियसनेस है। बाकी जितनी भी दुनिया हैं उनमें ये आकाश तत्व या ईथर जो कॉन्शियसनेस इस लेवल की नहीं है। और चूँकि प्रभु महाचेतनता का समंदर है और हमारी आत्मा प्रभु की अंश होने के नाते से चेतन है, और ये जो हमारा इंसानी जिस्म है इसी में हमारी जो आत्मा है वो इतनी चेतनता अख्तियार करती है, इसीलिए इसी मनुष्य जन्म में ही हमारा कल्याण हो सकता है। अब जो हमारी ज़िंदगी है उसका सबसे बड़ा एम जो है, जो मकसद है, वो ये है कि हम सत्य और असत्य का निर्णय करें। ये जो विवेक है ये सिर्फ इंसानी जन्म में ही हमें नसीब होता है, और हमारे धर्म ग्रंथों में यही आया है कि मुझे असत्य सत्य की तरफ ले चल, मुझे अंधेरे से रोशनी की तरफ ले चल। अब यहाँ माया का अंधेरा है, और हमें तो रूहानियत की रोशनी में जागना है। हम यहाँ सोए हुए हैं, और महापुरुष हमेशा यही कहते चले आए हैं कि हम जाग जाएं, हमारी आत्मा जो है वो ख्वाबे खरगोश से उठ जाए, ताकि इसी जन्म में हमारी आत्मा का और परमात्मा का मिलाप हो जाए। 84 लाख जिया जून का ये जो चक्र है ये ख़त्म हो जाए। हमारे हजूर पुरनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज अक्सर ये फरमाया करते थे कि ये जो डिमांड और सप्लाई का नियम है वो अटल है। यहाँ आग जलती है वहाँ ऑक्सीजन आ जाती है। गुरु या प्रभु, क्योंकि जो गुरु होता है वो चलता फिरता परमात्मा होता है, वो खुद वाहेगुरु होता है, वो एक पहाड़ की चोटी पे जैसे बैठा हो और उससे नीचे जब जरा भी आग निकले तो उसे तो पता चल जाता है। इसी तरह से जब भी किसी आत्मा की दिल की गहराइयों से एक शोला लपकता है, एक वहाँ से फूंक उठती है, एक धुआं उठता है और ये इच्छा प्रबल होती है कि उसकी आत्मा का और परमात्मा का मिलाप हो जाए, तो प्रभु वो जो चिंगारी निकलती है उसको देखता है और फिर उसका हल कर देता है। और वो जो हल करता है वो खुद किसी इंसानी जामा में इस संसार में आ जाता है और आके उस आत्मा का कल्याण करता है। तो ये जो रूहानियत का मार्ग है, ये एक अजीब पैराडॉक्स है कि ये एक्सपेंशन का भी रास्ता है, फैलाव का भी रास्ता है और सिमटाव का भी रास्ता है और कंट्रैक्शन का भी रास्ता है। ये कंट्रैक्शन का रास्ता जो है, जो सिमटने का रास्ता है, वो तो इस तरह से है कि जब प्रभु ये देखता है तो कोई आत्मा उसके लिए सिसक रही है, बिलक रही है, उस के बाद एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास वाला मामला है। उसकी एक ही आरजू है, एक ही तमन्ना है, एक ही ख्वाहिश है, वो ये है कि वो प्रभु से मिल जाए। तो वो प्रभु सत्ता दो के दोनों जहानों में नहीं समाती। यही एक सूफी शायर ने कहा है कि जो बड़ी अजीब बात है, क्या परमात्मा तो दोनों जहानों में नहीं समाता है, मगर एक मोमन के दिल में आके तो समा जाता है। तो यही बात है कि वो जो प्रभु है दोनों जहानों में नहीं समाता, और जिससे ये सारे संसार बने हैं, सारी सृष्टि बनी है, वो खुद सिमट के एक 6 फुट के इंसानी पुतले में आके समा जाता है। और ऐसा ही जो मुबारक पुतला होता है, जो मुबारक जिस्म होते हैं, उसको हम गुरु कहते हैं, उसे हम मुर्शिदे कामल कहते हैं, उसे हम मास्टर कहते हैं। तो इसीलिए एक उर्दू के शायर ने एक मिस्रा कहा है कि सिमटे तो दिले आशिक और फैले तो जमाना है। कि प्रभु दोनों जहानों में नहीं समाता है, मगर वो गुरु के दिल में, गुरु की रूह में समा जाता है। और हकीकत तो ये है कि वो खुद गुरु की सूरत में इस संसार में आके जाहिर होता है। तो ये तो सिमटाव का मामला है, कंट्रैक्शन का मामला है, और ये रास्ता है प्रभु का। मगर जहाँ तक हमारी आत्मा का तल्लक है, ये एक्सपेंशन का मार्ग है, ये फैलाव का मार्ग है। जब हमें गुरु मिलता है और नामदान की हम पे बख्शिश करता है, जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आने की और जीते जी मरने की कला हमें सिखाता है, तो फिर हम ये जो फाइनाइट हैं, महदूद हैं, हमारी महदूदियत ये ख़त्म हो जाती है। हम चूँकि लामादूद की अंश हैं, उसका जुज़ हैं, इसलिए हम लामादूद होना शुरू हो जाते हैं, हम सीमा रहित हो जाते हैं, हम सीमित नहीं रहते, हम लिमिटलेस हो जाते हैं, हम इन्फिनिट हो जाते हैं। और वो जो सद्गुरु की हम पे नज़र करम होती है, तो फिर ये जो हमारी कोताह नजरी है, ये जो हमारी छोटी दृष्टि है, ये असीम होती चली जाती है, लामहदूद होती चली जाती है। हम अपने आप से गुजर तक अपनी फैमिली में आते हैं, फैमिली से गुजरते हैं तो सोसाइटी में आते हैं, सोसाइटी से फैलते हैं तो नेशनल लेवल पे आते हैं, नेशनल लेवल से जब फैलते हैं तो इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आते हैं, और वहाँ से भी बढ़कर हम एक कॉस्मिक लेवल पे आ जाते हैं जिसमें हमें अपने सद्गुरु का जलवा जर्रे जर्रे में, कण कण में, फूल फूल में, पत्ती पत्ती में दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये प्रभु को पाने का जो रास्ता है, ये सिमटाव का भी रास्ता है और ये फैलाव का भी रास्ता, तो यही हमें कबीर साहब समझा रहे हैं कि हमें ये अनमोल दौलत जो मिली है इंसानी जिस्म की, मनुष्य के चोले की, इससे हमें पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि युग बीत गए, हमारी आत्मा प्रभु से बिछड़ी थी, और ये ज्यों ज्यों वक्त बीतता गया प्रभु से दूरी होती चली गई, यहाँ तक अब हमें इस बात का एहसास ही नहीं रहा कि हम प्रभु की अंश हैं, कि हम आत्मा हैं। हम तो माया के जाल में इस तरह से जकड़े गए कि हम अपने आप को भूल गए, और वो हमें जो चेतावनी दे रहे हैं कि हमें अपने आप को जानना चाहिए और प्रभु को पाना चाहिए। सेल्फ नॉलेज और गॉड नॉलेज, जो गॉड रियलाइजेशन के मंजिलों से गुजरना चाहिए, खुद शनासी और खुदा शनासी का रास्ता अपनाना चाहिए। आप प्यार से सुनिए जो हमें क्या समझा रहे हैं।
जाग प्यारे अब तू काहे को सोवे, रहन गए दिल काहे को खोवे।
गुरबानी में आया है कि हम सब सो रहे हैं, हम सो रहे हैं, हमारे पिता सो रहे हैं, हमारी माता सो रही है, और हमारी बहनें सो रही हैं, भाई सो रहे हैं, हमारे रिश्तेदार सो रहे हैं, इस संसार में सबके सब सो रहे हैं, और हमारे अंतर जो हर वक्त अमृत का सरचश्मा जारी और सारी है, हम तो वो अमृत से फैजयाब नहीं हो रहे, हम तो वो अमृत नहीं पी रहे, वो जो पांचों डाकू प्रभु ने हमें दिए हैं काम क्रोध लोभ और अहंकार के, वो पिए जा रहे हैं। और अजीब हालत है कि खुफ्ता रा खुफ्ता क्या कुनत बेदार, कि सोए हुए को सोया हुआ कैसे जगा सकता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम जाग जाएं, तो तब हमें कोई बेदार जो हस्ती है वही जगा सकती है, वो बेदार जो हस्ती होती है उसी को हम गुरु कहते हैं, उसी को हम मुर्शिद कहते हैं। तो यही बताते हैं कि हम तो सोए हुए हैं, हम तो अपने आप को भूल चुके हैं, मोह माया में हम गलतान हो गए हैं, तो इसलिए अगर हमें किसी ऐसी प्रभु रूप हस्ती की सोबत मिल जाए तो तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तो ये जो मनुष्य जीवन है, जो जागने का वक्त है, तो कबीर साहब हमें ये चेतावनी दे रहे हैं कि हम बेहोशी के आलम में जुगों जुगों से पड़े हुए हैं। तो अब ये जो हमें सुनहरी मौका मिला है, तो हमें ये चाहिए कि हम होश में आएं और हमारे वेद भगवान भी यही कहते हैं कि अवेक अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज फ्री, कि जागो उठो अपनी मंजिल की तरफ चलो, और जब तक हमें मंजिल मिल नहीं जाए हमारे पांव थमने नहीं चाहिए, हमें उसी रास्ते पे चलना चाहिए। तो यही गुरु अर्जन देव साहब ने भी फरमाया है कि उठ जाग उडावरिया तैं क्यों चिर लाया, क्या मुसाफिर तू उठो जाग, क्योंकि तेरी जो ज़िंदगी है ये तो बड़ी सीमित है, ये तो बड़ी छोटी है और इसका तो कोई भरोसा नहीं है कि यह कम ख़त्म हो जाए, तो इसलिए तुम्हें ये जो समय गुजर रहा है इससे पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि समय और लहर किसी का इंतज़ार नहीं करते। और फिर ये जो हमारी ज़िंदगी है ये बेवफा है, क्या मालूम कब धोखा दे जाए, इसलिए वो यही कहते हैं कि हमें इस मृत चिन्ह से पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और अब यही कह रहे हैं कि ये रात का समय तो गुजर चुका है, अब दिन चढ़ाया है और इस दिन में हम क्या करते हैं कि हम रात को तो सोते हैं मगर दिन में काम करते हैं, तो यही हमें बता रहे हैं कि भाई हम सो तो बहुत चुके, अब तो दिन चढ़ाया है और जो हमारा आदर्श है हमें उसके पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, हमें जागना चाहिए। और यही गुरबानी में फिर आया है कि भई प्राप्त मानुक देह रिया, गोबिंद मिलन किए तेरी बिरिया। तो ये स्वामी जी ने भी कहा है कि ये तो समय मिला अति सुंदर। तो सब महापुरुषों ने अपने अपनी जबानदानी में, अपने अपने अल्फाज में, अपने अपने अंदाज में एक ही चेतावनी दी है, एक ही हकीकत का बयान किया है। और उन्होंने हमें यही बताया है कि अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साथ संगत बच केवल नाम। कि हम अगर ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का आदर्श पूरा हो जाए तो उसका एक ही तरीका है, और वो ये है कि हमें अगर खुशनसीबी से किसी संत महात्मा की सोबत मिल जाए, किसी संत महात्मा की संगत मिल जाए, उसका सत्संग मिल जाए, क्योंकि ऐसी हस्तियाँ जब भी आती हैं वो तो प्रभु रूप होती हैं, खुद प्रभु होती हैं और वो तो अटर्नल होती हैं, आज सच जुगा सच है भी सच और नानक होती भी सच। और इस संसार में बाकी तो हर एक चीज़ फानी है, नाशवान है, अगर जहाँ कोई चीज़ जावेदानी है, अमर है, अटर्नल है, हमेशा रहने वाली है, तो वो दौलत है नाम की, वो दौलत है इश्क की। तो ये कहते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का जो ध्येय है अपने आप को जानने का और प्रभु को पाने का वो पूरा हो जाए, तो वो तभी मुमकिन हो सकता है कि अगर कोई वक्त का महात्मा, वक्त का हाकिम हमें अपनी छत्र छाया में ले ले, हमें अपने चरणों में बुला ले, हमें नामदान बख्श दे, जीते जी मरने की विद्या सिखा दे, जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर ले आए, हमें नाम की दौलत बख्श दे। क्योंकि इस संसार में जितनी भी दौलतें हैं वो सब की सब फानी हैं, हमें जायदाद की ख्वाहिश होती है, दौलत की ख्वाहिश होती है, सेहत की ख्वाहिश होती है, इल्म की ख्वाहिश होती है, मगर ये जितनी चीज़ें हैं ये सब बिट जाने वाली हैं। और जब इंसान का आखिरी वक्त आता है तो हंस अकेला जाई, उस वक्त उसके साथ दो नेमतें जाती हैं, एक तो है सतगुरु जो कि अबदी है, लाफानी है, जावेदानी है, अटर्नल है, अमर है, जो खुद प्रभु रूप है, और दूसरी नाम की दौलत जिसके जरिए हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो सकता है। और नाम कहते हैं ज्योति और श्रुति दोनों दोस्तों, क्योंकि जिस किसी ने प्रभु को पाया है ज्योति और श्रुति के जरिए पाया है, और जो पाएगा ज्योति और श्रुति के जरिए पाएगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का ध्येय पूरा हो जाए, तो हमें ये मोह और माया के चक्र से बचना चाहिए। और माया नाम है भूल का। ये कहा जाता है कि जब हम माँ के पेट में होते हैं, उसके गर्भ में होते हैं, तो हमें अपने पिछले जन्मों की कुछ सूझबूझ होती है, और जब हमें तकलीफ़ होती है वहाँ, तो हम प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें इस तकलीफ़ से निजात दे, और हम अपना सारा जीवन तेरी याद में गुजारेंगे। मगर जो ही हमने जन्म लिया, माया के इतना बड़ा पर्दा हम पे पड़ जाता है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। और हम तो ये भी भूल जाते हैं कि ये जो हमारा जिस्म है, ये एक मकान है और हम इसमें रहने वाले हैं, हम इंडवेलर हैं इसके, और हम दरो दीवार बन के रह जाते हैं। दरो दीवार को जो सत्ता देने वाली चीज़ है, जो इस जिस्म को चलाने वाली ताकत है, उसे भूल जाते हैं। और इसीलिए ये कहा गया है कि ये शरीर मूल है माया, कि इसमें तो हम भूल में पड़ जाते हैं, अपनी असलियत को खो देते हैं। बिल्कुल।
जाग प्यारे, अब तू काहे को सोवे, रहन गए दिन काहे को खोवे।
अब यही हमें बता रहे हैं कि रात का समय तो गुजर गया, हमारी कई युगों से आत्मा प्रभु से जुदा हुई हुई है, अब तो दिन का समय आ गया है। और ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का कायदा है कि जब दिन होता है तो हम कमर बांध लेते हैं और अपनी मंजिल की तरफ चल देते हैं। जब प्रभात होती है तो नगारा बजता है, और हम जो हमारी डेस्टिनेशन होता है उसकी तरफ चल देते हैं। तो कहते हैं कि ये जो मनुष्य जन्म मिला है, इससे पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ, और किसी महापुरुष की छत्र छाया में बैठ के जो अपना निज घर है उसकी तरफ सफर शुरू करो।
जिन जागा तिन मालक पाया, तै बारे सब सोए गवाया।
अब ये कहते हैं क्या है इंसान, तुम तो दीवाने हो, तुम तो पागल हो। अब जो दीवानगी होती है, ये दो तरह की होती है। हम तो सब दुनिया के दीवाने हैं, हम तो दुनिया जो ऊपर से खुशनुमा भासती है और अंदर से जिसमें दुखी दुख हैं, हम उसी में उलझ के रह जाते हैं। हम उससे बाहर की तरफ देख ही नहीं पाते। मगर जो असली दीवानगी होती है, वो तो यगानगी में बदल जाती है। ये जो दुनिया की दीवानगी होती है, ये दो दुखी का नाम है, दुचित्ती का नाम है, ये डिल्यूजन का नाम है। मगर जो असली दीवानगी होती है, वो तो दो से एक कर देती है। और जो दुनिया की दीवानगी है, वो एक से दो कर देती है, दो से चार कर देती है, वो हमारी तवज्जो को बाहर फैलाती है। मगर जो प्रभु का इश्क होता है, जो प्रभु की दीवानगी होती है वो हमें दो से एक कर देती है। इष्ट के मुतल्लिक बहुत सी परिभाषाएं की गई हैं, डेफिनेशन की गई हैं, और उनमें से एक यह है कि ये ऐसी तलवार है जो दो से एक कर देती है। और ये भी जो बात है बड़ी पैराडॉक्सिकल मालूम होती है, अजूब मालूम होती है कि तलवार काट के दो से एक कैसे कर देती है, मगर हकीकत में ये सच है कि ये इश्क की तलवार ऐसी है कि जो चीज़ ज़रूरी नहीं है ये उसको काट के साफ कर देती है, और वही चीज़ रखती है कि जो ज़रूरी चीज़ है। अब चाकू है, हम कोई फल खाते हैं तो उसका वो छलका चाकू से उतार लेते हैं, उसका गुदा रह जाता है। इसी तरह से जो इश्क की तलवार है ये जितनी हमारी वासनाएं हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के पर्दे हैं, ये जो खोल हैं फिजिकल एस्ट्रल और काजल, ये स्थूल सूक्ष्म और कारण, इन सबको ये जितने खोल हैं ये काट देती और आखिर में निरोल हमारी आत्मा रह जाती है। और यही कह रहे हैं कि ये हम तो पागल रहे हैं, हम तो दुनिया के दीवाने रहे हैं, हम प्रभु के दीवाने नहीं बने, और हमें तो प्रभु का दीवाना बनना था। तो हम ख्वाब खरगोश में पड़े रहे हैं, हमारे होश ठिकाने नहीं रहे, मगर अब ये जो हमें इंसानी जिस्म मिला है तो हमें ये हमारी सुबह का वक्त है, ये वो जो नूर की सुबह है उसका समय है, तड़के का समय है, और अब हमें अपनी कमर बांध लेनी चाहिए और अपने सफ़र की तरफ चल देना चाहिए, क्योंकि ये जो इंसानी जिस्म है ये बड़े भागों से मिलता है, और अगर एक दफ़ा बदकिस्मती से हमने ये सुनहरी मौका गवा दिया तो फिर खुदा जाने कि कब वो आपत क्या माजरा निकले वाला मामला हो जाएगा कि पौड़ी छुटकी फिर हाथ ना आवे अहला जन्म को आया। तो यही बताते हैं कि हमें मोह माया से, दुनियादारी के झंझटों से, इनके सपन से जागना है, क्योंकि जब हम सपन ले रहे होते हैं तो हम जो कुछ देखते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि वो सत्य है, मगर जब सपना टूटता है, जब ख्वाब ख़त्म होता है तो फिर हमें होश आती है कि ये तो कोई असल चीज़ नहीं थी, इसमें रियलिटी नहीं थी। इसी तरह से हमें भी जागना है, और जब हम प्रभु के रास्ते पे जागते हैं तो हमें इस बात का निर्णय हो जाता है, इस बात की डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है कि जो दुनिया और दुनियादारी के सारे झंझट जितने हैं ये सब एफीमरल हैं, ट्रांजिटरी हैं, फानी हैं, नाशवान हैं, और हमारी आत्मा तो परमात्मा की अंश है जो अमर है, और हमारी आत्मा को तो अमर होना है। इसलिए हमें यही चाहिए कि हम किसी महापुरुष के चरणों में पहुँचें, या असली मानों में वो खुद हमें अपनी कृपा से अपने चरणों में बुला ले, नाम दान बख्श दे, ये जो मोर माया की नींद आए इससे जगा दे, और प्रभु के रास्ते पे अपनी दया से हमारा ये जो सफ़र है ये शुरू करा दे।
जिन जागा तिन मालक पाया, तै बारे सब सोए गवाया।
कहते हैं कि हमने तो ख्वाबे खरगोश में ये जन्म ही गवा दिया है, मगर जो किसी महापुरुष की दया मेरे से जाग उठे हैं उन्होंने तो हीरे जवाहरात पा लिए हैं। और इस जन्म में हीरे जवाहरात क्या हैं, क्योंकि यहाँ तो हम मटेरियलिज्म की दुनिया में रहते हैं, भौतिकवाद की दुनिया में रहते हैं। हमारे पास जो तशबीहें हैं, जो इश्तियारे हैं, जो मेटाफर्स और सिम्बल्स हैं, जो अल्फाज हैं, वो तो सब के सब मटेरियल वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं। अब हम चेतनता को यहाँ जो मटेरियल अल्फाज हैं, भौतिकवाद के जो लफ्ज़ हैं, जो शब्द हैं, उनमें कैसे बयान कर सकते हैं? तो आप ये कहते हैं तो हमें तो हीरे और मोती और जवाहरात जो हैं उन्हें पाना है, और इस संसार में हीरे और मोती और जवाहरात क्या हैं? जो सबसे बड़ी पेश मूल्य कीमत है यहाँ, जो अमूल्य वस्तु है यहाँ, वो है अपने आप का जानना और प्रभु को पाना। वो है नाम की दौलत और सद्गुरु की कृपा। तो यही कहते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि ज़िंदगी का ध्येय मिल जाए, तो उसके लिए हमारी जो तवज्जो है उनका मरकज यही दो चीज़ें बननी चाहिए, एक हमारा सद्गुरु और दूसरा नाम।
पिया तेरे चतुर तू मूर्ख नारे, कब होना पिया के सेज सवारे।
अब ये कह रहे हैं कि हमारी जो जान की जान है, जो प्राणों के प्राण हैं, जो रूहे रवान हैं, जो प्रभु है, उसको तो हम भूल जाते हैं। और हम तो मूर्ख हैं, हम तो अपनी हकीकत को नहीं जानते। हमें चाहिए तो ये था, ये हमें जो मनुष्य जन्म मिला था इसमें प्रभु को मिलने की तैयारी करते। देखिए, जब कोई बच्ची होती है, वो जब जवानी की तरफ कदम रखती है, तो उसके दिल में एक कुदरती ख्वाहिश पैदा होती है अपने पिया को मिलने की। और यही हमारी आत्मा की, हमारी रूह की, हमारी सुरत की भी यही ख्वाहिश होनी चाहिए कि हमने जो हमारा प्रीतम है, जो हमारा महबूब है, हमने उसको मिलना है। तो जब कोई युवती अपने प्रीतम को मिलने की तैयारी करती है, तो वो बनती है, संवरती है, निखरती है, अपने जिस्म पे जितनी आलाइश हैं उन सबको दूर करती है, अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनती है, अच्छे से अच्छे गहने पहनती है, अपना बनाव श्रृंगार करती है। और इसी तरह से हमने भी तो अपने महबूब को मिलना है, और जो हमारा महबूब है वो तो पवित्रता मुजस्म है, वो तो प्योरिटी परसोनिफाइड है। और यही बाइबल में कहा है कि ब्लेसड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड, कि वही प्रभु को पा सकेंगे और उन्हीं का जीवन जो है ये कामयाब होता है जो अपने प्रभु को पाते हैं। और प्रभु है पवित्रता का मुजस्मा। तो जब तक हमारी आत्मा पवित्र नहीं होती, वो प्रभु को पा नहीं सकती। अब देखिए, जैसे युवती अच्छे वस्त्र पहनती है, अच्छे आभूषण पहनती है, तो हमारे भी ये जो चरित्र है, ये जो करैक्टर है, ये जो हमें नम्रता है, ये जो हमें पवित्रता है, ये जो नॉन वायलेंस की खूबी है, जो निष्काम की खूबी है, यही हमारे आभूषण हैं, यही हमारे वस्त्र हैं। तो हमने इन सबको पाना है, और फिर हमने अपने चेहरे को जितने जो दाग हैं काम क्रोध लोम और अहंकार के, इन सब से पाक करना है, साफ करना है, पवित्र करना है। और हमने अपने महबूब के लिए, अपने प्रीतम के लिए सेज जो है वो बिछानी है। तो जो सेज बिछाई जाती है वो फूलों से सजाई जाती है, और जो फूल हैं वो तो बड़ी सटल चीज़ हैं, बड़ी नाजुक चीज़ हैं, बड़े कोमल होते हैं। मगर हम तो दुनिया की जितनी ये चीज चीज़ें हैं हम तो उनमें गिरे हुए हैं। हमें तो सटल होना है, हमें नाजुक होना है, हमें पाक होना है। ये जो हम पे स्थूल सूक्ष्म और कारण जिस्म हैं, ये पर्दे हैं हम पे, इन सबको हमें हटाना है। और जब ये हट जाएंगे तो तभी हमारा जो जिस्म है, जो हमारी आत्मा है, क्योंकि दुनिया में तो हम जिस्म की बात करते हैं, इस संसार में प्रभु के रास्ते में आत्मा की बात करते हैं, तो इसके ऊपर जितने ये पर्दे हैं इन सबको हमें हटा देना है, ताकि हम सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाएं, हम नाजुक से नाजुक बन जाएं, हम सटल से सटल बन जाएं। और तभी हम अपने परमात्मा को पा सकते हैं, अपने प्रीतम को पा सकते हैं। और हमने तो फूलों की सेज जो है अपने प्रीतम के लिए सजानी है, और फूल कोमल होते हैं, उनमें से सुगंध आती है। और ये जो कोमलता है ये हमारी आत्मा की कोमलता है, इससे जब सब गुलाब उतर जाते हैं तो तभी ये कोमल बनती है। और इसी से सुगंधी आनी चाहिए, खुशबू आनी चाहिए। और हम में से तो काम क्रोध लोम और अहंकार की बदबू आती है। अब ये अपने अपने अंदाज की बात है। संत महात्मा हमारी दुनिया की ये जो सिमलीज हैं, यही जो उपमा हैं, यही जो इश्तियारे हैं, इन्हीं से काम लेते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें जितने ये गुनाह हैं उन सब से अपनी आत्मा को पाक साफ करना है, ताकि ये नर्म नाजिक हो जाए। इससे जितने बदनमा धब्बे हैं उन सबको साफ करना है, ताकि अपने प्रीतम के ये पेश होने के काबिल हो सके। कहने हमारी ज़िंदगी का आदर्श तो ये था कि हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और माया के जितने पर्दे हैं वो सब उतार देते, और प्रभु की जितनी खूबियां हैं उन सबको ग्रहण कर लेते। वह कहते हैं कि हमने तो ज़िंदगी में ये काम नहीं किया है, और हमारी ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और अब तो हमें जो अपना अंत है वो सामने दिखाई देता है। और जैसा कि बाबा फरीद ने कहा है कि अग्गे नेड़े आया पीछे रहा दूर। और ये भी एक अजीब भूल है कि जब हमारा बचपना होता है तो हम कहते हैं कि ये तो खेल कूद का वक्त है, जब जवानी आती है तो हम कहते हैं कि चलो जो दुनिया की कुछ टंगडलियाँ मना लें, जब बुढ़ापा आएगा तो फिर प्रभु की तरफ रुजू करेंगे। और जब हमारी जवानी ढलती है तो फिर हमारी वो उम्र आती है जिसे के संत महात्माओं ने गधे की उम्र कहा है। हम कोशिश करते हैं कि जितनी हम पे जिम्मेवारियाँ हैं दुनिया की सब हम पूरी कर सकें, और हम दुनिया की दौलत और दुनिया की ताकत के झंझटों में ही अपना सारा समय व्यतीत कर देते हैं। तो हम दुनिया की जो हवस है उसमें लंपट हो जाते हैं। मगर हमने तो अपने महबूब के लिए, अपने प्रीतम के लिए अपनी सेज सवारनी है, अपने आप को पाक साफ करना है। और सेज पे तो फूलों के कोमल पत्तियों की तरह से जितनी प्रभु की खूबियाँ हैं उन सबको हमें ग्रहण करना है, वो हम नहीं कर रहे हैं। तो कबीर साहब हमें ये चेतावनी दे रहे हैं कि हमारा आखिरी दिन नज़दीक आ रहा है, हमें अपने आदर्श की कोई रियलाइजेशन नहीं है, हम तो महसूस भी नहीं करते कि हमारा आदर्श क्या है। और कुर्बानी में आया है कि बुलावड़े बुल्ली बुलबुल पछुतानी, कि हम एक बूल से दूसरी बूल में, दूसरी बूल से तीसरी बूल में चले जा रहे हैं। ये एक ग्रैंड डिल्यूजन है कि जिसके हम शिकार बने हुए हैं और दुनिया हमें सच बात रही है। हालांकि ये दुनिया फानी है, ये नाशवान है, और हमें होश तभी आती है कि जब हम अपनी ओल्ड एज में पहुँचते हैं, हम बुढ़ापे में पहुँचते हैं, कि जिसके हमने ये ख्वाब लिए होते हैं कि बुढ़ापे हम प्रभु में कुछ याद करेंगे। तो जो बुढ़ापा है, ये कहा जाता है कि वो आधी मौत के बराबर होता है, हमारे जिस्म के अंग काम करने बंद कर देते हैं, हमारा सर हिलता है, हमारी आँखों से बिनाई जाती रहती है, हमारे कदम लड़खड़ाते हैं, हमारी जो टांगें हैं वो कांपती हैं, सारा शरीर जो है वो कांपता है, और उस वक्त भी हम प्रभु को याद नहीं कर सकते। और अगर प्रभु को याद भी करना चाहें तो उस वक्त भी दुनिया की हवस जाती नहीं है, जो जो उम्र बढ़ती है दुनिया की हवस भी बढ़ती चली जाती है, और कुछ नहीं तो यही ख्याल होता है कि चले पोते और पोतियों को हम खिला लें, और हम में से कोई भी मरने के लिए तैयार नहीं होता। यही हमें हिस्ट्री भी बताती है। एक ग्रीक माइथोलॉजी में एक एडमिटस की कहानी आती है कि वो शहजादा था, और वो उस वक्त की जो सबसे हसीन शहजादी थी उससे शादी करना चाहता था, तो उसने गॉड अपोलो से जो मदद मांगी, और ये कहा जाता है कि उस वक्त ये कंडीशन थी कि जो शेर को अपने रथ में जोतेगा और वो जो रथ ले जाएगा वही उसे जाके पालेगा। तो पालो ने उसमें शेर भी जो था उसके रथ में जोत दिया, तो उसे अपनी महबूबा को पा लिया। मगर फिर जो जीस था वो जितने देवता थे उन सब का फादर कहलाता था, उन सब का पिता, उन सब का हुक्मरान कहलाता था। तो उससे उसे पता चला कि इसकी तो उम्र ही बहुत कम है, इसने तो जल्दी मर जाना है। तो चूँकि वो उसका देवता था, उसने उससे ये वरदान मांगा कि अगर इसकी जगह कोई और मरने को तैयार हो जाए तो उसकी जान जो है वो बख्शती जाएगी। तो ये कहते हैं कि एडमिटस को जब ये मालूम हुआ तो उसने सोचा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके जो माता पिता थे वो बहुत वृद्ध थे और उनकी सेहत ठीक नहीं रहती थी, और हर वक्त वो ये कहते थे कि ये कैसी नकारा ज़िंदगी है, कैसी बेकार ज़िंदगी है, इससे तो मरना बहुत अच्छा है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा जो पिता है वो बहुत बूढ़ा है, उनके पास चला गया और कहने लगा कि जी मेरी इस तरह से मौत है, आपने तो इसे सारी दुनिया देख ली है और मैंने तो कुछ नहीं देखा है, तो अगर आप मेरी जगह मरना मंजूर करें तो मैं तो अपनी सारी ज़िंदगी है, मेरी अभी नौजवानी है, बाकी उम्र है, मैं उसका फ़ायदा उठा लूँ। तो जब उसके पिता ने ये बात सुनी तो बहुत नाराज़ हुए, कहा कि क्या तुम्हें मैंने इसलिए पैदा किया था, इसलिए पढ़ाया था, लिखाया था, अपनी दौलत सब तुम पे खर्च की थी, और जहाँ तक कि मैंने तुम्हें अपनी हुकूमत भी बख्श दी है कि तू मेरी जान ले ले। तो वो राज़ी नहीं हुआ, इसी तरह से कोई और भी राजी नहीं हुआ तो ये कहते हैं कि अखीर में वो जिस युवती से उसने शादी की थी, जो हसीनाएं जहाँ थी, उसने ये मान लिया कि मैं तेरी जगह अपनी जान दे दूँगी। ये ग्रीक मिथोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि हरकुलिस ने बॉस का मुकाबला किया और जो वो शहजादी थी उसकी भी जान बचा ली। वो तो कहानी की बात है, मगर ये हकीकत है कि कोई जो बूढ़ा भी होता है भी मरने को तैयार नहीं होता। और इसी तरह से हमारे मुर्शिद आज़म एक कहानी सुनाया करते थे कि एक बूढ़ी औरत थी, उसकी नौजवान बच्ची थी, वो बीमार हो गई, बहुत बीमार हुई। तब बुढ़िया उसके इर्द गिर्द घूमे और उसके सामने प्रार्थना करे कि प्रभु तू इस बच्ची को बख्श दे और मेरी जान इसकी जगह ले ले। तो ऐसा करना एक दिन हुआ कि उसका घर का दरवाज़ा खुला रह गया, एक बैल उसमें घुस आया। वहाँ एक हांडी पड़ी थी जो कि काली थी बाहर से, तो उसमें कुछ खाने को चीज थी। बैल ने उसमें मुंह डाल दिया और वो हांडी उसके सींगों में लटक गई। अब जब सींगों में हांडी लटक गई तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने वहाँ वो जो आंगन था उसमें घूमना शुरू कर दिया। और जब इस बुढ़िया ने ये आवाज़ बाहर सुनी तो वो दरवाज़े से जब बाहर आई तो उसने देखा कि इस तरह की एक अजीब शक्ल है जिसके मुंह जो है वो काला है और वो उसकी तरफ भाग के आ रही है। तो उसने समझा कि ये तो मलकुल मौत का फरिश्ता है, मौत का फरिश्ता है। तो वो घबराई, उसने कहा कि भाई मैं नहीं हूँ, मरने वाली तो वो है लड़की, उसकी तरफ चले जाओ। तो यही हम सब की हालत है कि हम किसी भी हालत में मरना नहीं चाहते। और बुढ़ापे में भी मरना नहीं चाहते, मगर बुढ़ापे में अब फिर ये बात होती है कि हम प्रभु को याद नहीं कर सकते। जैसा कि नौवीं पातशाही ने कहा है कि हमारा जिस्म जो है नकारा हो जाता है। तो ये एक माया का ऐसा पर्दा है कि जो हमारी ज़िंदगी है इसमें हम सब वादा या फर्दा करते हैं, कल की बात करते हैं। हमारे अधूरे पुनूर समाया करते थे कि प्रोकेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम, कि हम कल अपनी ज़िंदगी में करते जाते हैं और इसी से हमारी ज़िंदगी में कल पैदा हो जाती है। तो यही बता रहे हैं कि हम अपना सारे ज़िंदगी का जो समय है वो गवा देते हैं। हमारा मकसद तो ये होता है कि हमारी आत्मा का और परमात्मा का जो है मिलाप हो जाए। हम अपने पिया के लिए अपनी सेज जो हैं उसे सवारें, उसे बनाएं, मगर उस काम की तरफ हम तवज्जो नहीं देते।
हाँ जी, पिया तेरे चतुर तू मूर्ख नारे, कब हुना पिया के सेज सवारे।
तो यही कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का जो असली ध्येय है उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। अब प्रभु तो ये चाहता है कि आत्मा प्रभु से मिल जाए और प्रभु ने सामान भी ऐसा ही बना रखा है। और यही गुरु साहब ने भी कहा है कि ना तो जो हमारा जिस्म प्रभु ने बनाया है उसमें कुछ कमी है और ना ही जो हमारा खमीर है आत्मा का उसमें कोई कमी है। कमी तो हम में है कि हम जो हमारी ज़िंदगी का असली मकसद है अपने आप को जानना और प्रभु को पाना उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते।
पिया तेरे चतुर तू मूर्ख नारे, कब हुना पिया के सेज सवारे, तै बौरे बौरापन की ना बर जोबल पिया अपना चीना।
अब यही बताते हैं कि हमने तो ये जो सुनहरी मौका मिला था उसे ही गवा दिया है। हमने दुनिया की दीवानगी में उम्र खो दी है, प्रभु की दीवानगी नहीं की। हमने इस जिंदगी को एक सौदा समझा है, एक बिजनेस समझा है दुनियादारी का। हम अगर इसे सौदा समझते तो हमारी जिंदगी का हल हमें मिल जाता। सौदा तो कहते हैं बिजनेस को, लेन देन की बात जो है, सौदे में गिव एंड टेक होता है। दुनिया की जितनी भी हम चीज़ें करते हैं सब गिव एंड टेक करते हैं। दुनिया की ये जो मोहब्बत है इसमें भी खुदगर्जी होती है। दुनिया की जो सबसे अच्छी प्यार की मिसाल दी जाती है वो माँ बच्चे की दी जाती है। पर माँ को भी कभी कभी दिल में ये ख्याल होता है कि जब बच्चा बड़ा होगा तो मेरी सेवा करेगा। मगर जो प्रभु को मिलने का रास्ता है वो तो सौदा का रास्ता है। सौदा कहते हैं प्यार को, प्रेम को, इश्क को। और जो सौदा होता है वो तो देना जानता है, वो लेना नहीं जानता। सौदे में देने और लेने दोनों की बात होती है। जो सौदा होता है उसमें दे दे और दे की बात होती है। जैसा कि कबीर साहब ने कहा है, वो तो अपने आप को हवाले करने की बात होती है, कुर्बानी की बात होती है। लव नोज सर्विस एंड सेक्रीफाइस, हमारे हुजूर पुनूर फरमाया करते थे कि वो तो खिदमत करनी जानता है, सेवा करनी जानता है, कुर्बानी देनी जानता है। तो यही कहते हैं कि हमारी जिंदगी का जो लक्ष्य है, परम लक्ष्य, वो तभी मिल सकता है अगर हम अपने आप को गुरु के हवाले कर दें। अगर हम हर तरह की कुर्बानी प्रभु को पाने के लिए करने के लिए तैयार हों, अगर हमारे दिल की गहराइयों में कोई ऐसी इच्छा नहीं हो कि हम कुछ पाएं, क्योंकि जो प्रभु को पाने का रास्ता है, जो रूहानियत है, वो तो अपने आप को खोने का रास्ता है। इस रास्ते में जिस किसी ने अपने आप को खोया है उसी ने अपने आप को पाया है। तो यही हमें बता रहे हैं कि हमने ये जो अपना जीवन है ये बेकार जाया कर दिया है और अब हमें मौत सामने नज़र आ रही है। मगर आप पछताए होत क्या जब चुड़िया चुग गई खेत। और हम जब तक हमारी मौत नहीं आती हम सोए रहते हैं। कबीर साहब ने कहा है कि कहे कबीर तय ही न जागे जब जम का दंड मूंद में लागे, मगर बाय दैट टाइम इट इज टू लेट। उस वक्त कुछ नहीं हो सकता। हम जब हमारे होशो वाश कायम होते हैं तो जवानी के दाम में, इंद्रियों के भोगों में, रसों में लंपट रहते हैं। ना हम प्रभु को चीनने की तरफ रजू करते हैं, ना हम उसका ख्याल करते हैं, ना हमें उसका एहसास होता है। और नतीजा ये होता है कि हम फिट राशि लाख जिया जून के चक्र में चले जाते हैं और क्या मालूम कि कब हमें फिर इस निर्वाण का मौका मिले, हमारी आत्मा को और परमात्मा के मिलाप का मौका मिले। 84 लाख जिया जून का ये जो चक्र व्यू है ये हमारे लिए ख़त्म हो जाए और हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो जाए।
तै बोरे बोरापन की ना भर जो बल पियाया अपना चीना जाग देख पिया से जना तेरे तोहे छांड उठ गयो सवेरे।
अब हमें एक और हकीकत से रूसनाश करा रहे हैं कि हम तो सोए रहते हैं और जो गुरु है वो हम पे दया करनी चाहता है। अब कहते हैं कि हम तो सोए हुए हैं और जब हमारी आंख खुलती है तो मालूम होता है कि हमारे प्रीतम आए भी और चले भी गए, हमने उसके दर्शन नहीं किए, हमने उससे मिलाप नहीं किया, जो हमें खुशकिस्मती मिली थी उससे हमने फ़ायदा नहीं उठाया। ये गुरु नानक साहब ने कहा है कि धन छूती पर सद जागनता, कि जो स्त्री है जो हमारी आत्मा है वो तो सोई रहती है मगर जो हमारा प्रभु है वो हर वक्त जागता रहता है। जो हमारी जान की जान है, जो हमारी आत्मा की आत्मा है, प्राणों को प्राण है, वो तो बार बार हमें अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है मगर ये हमारी बदकिस्मती है कि एक का संगत एकत ग्रह बसते मिल बात न करते भाई, कि हमारी आत्मा भी इसी इंसानी जिस्म में है और परमात्मा भी इसी में है मगर ये एक दूसरे का कभी मुंह नहीं देखते हैं, इनका कभी मिलाप नहीं होता है। और यही एक सूफी ने भी कहा है कि दिला ताक है दरी खाके मिजाजी चुनी हम तो तिफला खाक बाजी, क्या दिल तू कब तक ये जो तेरा खाक का पुतला पांच अनासर का ये जो जिस्म है इसमें गलतान रहेगा और बच्चों की तरह से कब तक जो धूल से खेलता रहेगा। तुम्हें चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो ज़िंदगी का मकसद है, जो लक्ष्य है, उसकी तरफ तवज्जो कर और सत्य और असत का निर्णय कर, क्योंकि प्रभु ने इंसान को विवेक की जो खूबी है वो बख्शी है और यही इंसानी जन्म की फजीलत है। हमारे हुजूर पुरनूर अक्सर फरमाया करते थे कि जिनकी रातें संवर गईं उनका सब कुछ संवर गया, कि रात का समय होता है हम नींद में खो देते हैं उसी वक्त चोर अपनी चोरी करता है मगर जो प्रभु को दीवाना होता है वो प्रभु की भक्ति करता है। और अगर हम इन द स्मॉल आवर्स ऑफ द मॉर्निंग या जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें अगर हम जागें तो फिर हमारा और हमारे प्रीतम का मिलाप हो सकता है, क्योंकि अगर हम जाग के उस वक्त भक्ति करें, क्योंकि यही एक सिख की तालीम भी है कुर्बानी के अनुसार कि वो ब्रह्म मुहूर्त में जागे और नाम को ध्याए। हमारे मुर्शिद आज़म फरमाया करते थे कि भाई मैं तो रूहानियत के ख़जाने अपने साथ लेकर सुबह सुबह 3 बजे अपने सारे शिष्यों के पास जाता हूँ मगर मैं वापस ले आता हूँ वो तो सोए हुए होते। तो यही बात कबीर साहब बता रहे हैं कि हमारे पिया आए भी मगर हम सोए रहे, हम जागे नहीं थे, वो चले गए। और यही गुरबानी में आया है कि रात कथूरी वंडी है जिन्ना नैन निंद्रा उड़े, कि रात को कस्तूरी बांटी जाती है, जो रूहानियत की खुशबू है उसकी दाद दी जाती है मगर हम तो सोए होते हैं, हम तो उसे पाते नहीं हैं। और अमृत वेले की बहुत तारीफ है गुरबानी में कि अमृत वेले सच नाव बढ़ियाई विचार। तो ये कहते हैं कि मनुष्य का चोला हमें प्रभु ने दिया था, उससे फ़ायदा नहीं उठाया। हमें चाहिए तो ये था कि हम अपने सतगुरु के हुक्म के अनुसार अपना जीवन डालते, उसने जो हमें जीते जी मरने की विद्या सिखाई थी, जो नामदान बक्ता था उसमें हम अपना वक्त देते, वही हमारी सबसे बड़ी तवज्जो का मरकज़ बनता। और नौ द्वारों से ऊपर आके हम अपने गुरु के दिव्य रूप के दर्शन करते और उसकी दया मेर से रूहानी मंडलों से जाकर पहले उसमें लीन होते और प्रभु में लीन हो जाते। मगर हमने तो ये अपना जो संसारिक जीवन था इसे गवा दिया।
जागो देखो पिया से जना तेरे तोहे छांड उठ गयो सवेरे, कहे कबीर सोई तन जागे शब्द बाण और अंतर लागे।
अब ये शब्द की बात करते हैं हम आमतौर पर, तो बाहर के गाने बजाने को शब्द कहते हैं, किसी बात को लय में पढ़ लेना, राग में पढ़ लेना, उसी शब्द का पढ़ना कहते हैं। ये तो बाहर का शब्द है, मगर हमें तो धुनात्मक शब्द की ज़रूरत है, हमें तो प्राविद्या की ज़रूरत है, हमें तो अंतर का जो शब्द है उसकी ज़रूरत है। और जो शब्द है वो एक शब्द गुरुदेव का, वो तो गुरुदेव का जो शब्द होता है उसी का असली मानव में शब्द कहते हैं। और गुरुदेव गुरु की उस हालत का नाम है जब वो अपने दिव्य स्वरूप के हमें दंतन में दर्शन देता है। और यही कहा गया है कि गगन में बात होती अति झीनी, कोई सुने रे ब्रह्म ज्ञानी। कि जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो हमारे अंतर हर वक्त जो जारी और सारी शब्द है जिसे हम नात कहते हैं, उद्गीत कहते हैं, नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं, हरि कीर्तन कहते हैं, श्रोषा कहते हैं, कलमा कहते हैं, बांगे आसमानी कहते हैं, वॉइस ऑफ साइलेंस कहते हैं, सोनरस लाइट कहते हैं, या जिसे लॉगस कहा गया है, उसके साथ अगर हमारा कांटेक्ट हो जाए तो तभी हमारी ज़िंदगी का जो ध्येय है वह पूरा होता है। और ये वो शब्द वही ताकत है कि जिसके आधार से ये सारी दुनिया चल रही है, क्योंकि शब्द के धारे, नाम के धारे खंड ब्रह्मण और उत्पत्ति परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिरोपत होवे। उसी अगर शब्द से हमारी दूज आत्मा लग जाए तो तब हमारा कल्याण हो सकता है, तब जो 84 लाख जिया जून का चक्र है ये ख़त्म हो सकता है, तब जो हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप है वो हो सकता है। और उसी शब्द की महिमा गुरबानी में की गई है कि शब्द धरती शब्द आकाश, शब्दों शब्द व्या प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटों का ताज, कि वो हर घट में है। मगर उसका कांटेक्ट तभी मिल सकता है जब हमें कोई ऐसी प्रभु रूप हस्ती अपने चरणों में बुला ले कि जिसने खुद मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ को हल किया है और हमें उसके हल करने में मददगार हो सकती है। और फिर ये शब्द जो है ये 10वीं गली में मिलता है, ये 9 दरवाज़ों में नहीं मिलता। 9 दरवाज़े तो बाहर के हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, 2 हमारे नाक के सुराख हैं, हमारी जबान है, मुंह है और इसी तरह से गुदार इंद्री हैं, ये नौ द्वारों में प्रभु नहीं मिलता है कि नौ दर ठाके तावत रहे तस्वीर निजगर भाषा पाए उथे अनत शब्द बजे दिन राती गुरमत्ती शब्द सुनावनिया। और जब तक अंतर्मुख गुरु की दया से हमारी आत्मा इस नाम से नहीं जुड़ती तब तक किसे शांति नहीं मिलती, हमारे मन को टिकाव नहीं मिलता, हमें हमेशा का रस, हमेशा की खुशी, हमेशा की सरसारी नहीं मिलती। और ये जो साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ है, ये जो 84 लाख जिया जून का चक्र है, ये ख़त्म नहीं होता। तो ये कबीर साहब का चेतावनी का शब्द है, उन्होंने यही हमें बताया है कि ये जो मनुष्य जन्म है ये जागने का वक्त है, हमें ख्वाबे खरगोश से जागना है। और दुनिया के तो सब लोग जो हैं वो सब सोए हुए हैं, वो तो हमें जगा नहीं सकते, हमें कोई ऐसी हस्ती जगा सकती है कि जो खुद प्रभु रूप है, जो हर वक्त जागती है और हमें जो बेदार कर सकती है, जो हमें जगा सकती है। और ऐसी ही हस्ती को हम संत सदगुरु कहते हैं, पूर्ण सदगुरु कहते हैं, मुर्शिद कामल कहते हैं, परफेक्ट मास्टर कहते हैं। तो उनका आशय ये है कि ये जो हमें सुनहरी मौका मिला है इससे हमें पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। हम जितने भी बहन भाई यहाँ बैठे हैं, हम सब बड़े खुश नसीब हैं, क्योंकि हम में से कुछ तो वो खुश नसीब हैं जिन्हें हमारे मुर्शिद आज़म से नामदान मिला है, बेशतर भाइयों को हुज़ूर पुनूर से नामदान मिला है, और बाकी बहन भाइयों को भी उन्हीं के हुक्म से और उन्हीं के नाम में नाम की दौलत मिल रही है। हमारे हुज़ूर पुनूर फरमाया करते थे कि वी आर थ्राइस ब्लेस्ड, कि हम पे तीन नेमतें जो हैं नाजल हो चुकी हैं, तीन बरकतें हमें मिल चुकी हैं। पहली बरकत तो ये कि हमें इंसानी जिस्म मिला है, दूसरी ये कि गुरु ने हमें अपने चरणों में बुला लिया है, और तीसरी ये कि हमारे गुनाहों को नज़रअंदाज करके हमें नामदान बख्श दिया है। अब वो फरमाया करते थे कि हमें खुद अपने आप पे रहम करना चाहिए, तो हमें यही चाहिए कि जैसा हमारे गुरु ने हुक्म किया है वैसे ही हम अपने जीवन को बनाएं, हम डायरी रखें, हम वजन में वक्त बाकायदगी से दें, अपने जीवन को सच्चा और सुच्चा बनाएं। हमें नम्रता कूट कूट कर बरी होनी चाहिए, हमारी ज़बान में मिठास होनी चाहिए, हमें हर वक्त निष्काम सेवा की भावना होनी चाहिए। और जो हमारा समय ज़ाया हो चुका है वो तो ज़ाया हो चुका है, बाकी ज़िंदगी के जो क्षण हैं वो अपने सतगुरु की याद में, उसके प्यार में, उसकी लगन में, उसके भजन में गुजारने चाहिए, ताकि हमारी ये दुनिया भी समझ जाए और हमारी आकबत भी समझ जाए।